बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम, श्री बरवाला धाम की जय। सत साई ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन सादेवा, संतों सर्वस दी नहीं सतगुरु साहेब संत सब, दंडोतम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान, नर आकार निर्विषम काल जाल वंजनम, निर्लेपम निज निरगुणम अकल अनुबेसोन दुनम, सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा एथा है, वार पार नहीं मध्य तुम ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई, गण नायक गलताना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं, गण नायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करूं सेवा परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम, सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन धाम, ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाम, पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय जाम, समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे, 33 कोटि अदारा धावे से 88 उतरे वो जल पारा, कट है यम की फांसी 33 कोटि अदारा धावे से 88 उतरे वो जल पारा, कट है यम की फांसी। सत साहिब कर जोरों विनती करूं, धरों चरण पर शीस, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीस, कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम, अब गुण किए तो बहुत किए करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो बावें गर्दन उतार, अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पोत कपोत हूं बौर पिता को लाज, मैं अपराधी जन्म का नक्सक भरे विकारे, तुम दाता दुख बंजना मेरी करो संवार, वीर जय अब कैसते गुरु मिले सब दुख आखों रो, चरणों ऊपर शीस रखूं कहूं जो कहनी हो, राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बिनक पड़ेगी कान। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे प्राण जहांगे छोटे। नहीं भरोसा देही का विनस जावे छिन माही, श्वास उश्वास नाम जपो हो और यतन कछुनाई। कबीर श्वास उश्वास नाम जपो व्यर्थ श्वास मत खो, न जाने इसे श्वास को हो आवण हो क न हो। बंदे तो करे बंदगी जे चावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवायो किस काम। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करतार, गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक दीन दयाल कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से आज ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। प्रभु की कृपा से ही ऐसे शुभ समागम हुआ करते हैं, उसके हुक्म के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस काल के लोक में आकर हमें अपने मूल स्थान की याद दिलाते हैं। हम कहां से आए थे और हम किस कारण से यहां जन्म और मृत्यु के इस भयंकर रोग से ग्रस्त हुए। जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं था तब तक हम इस क्रिया को इतना ही मान रहे थे कि जन्म हो जाता है फिर युवा हो जाते हैं, युवा होने के उपरांत फिर विवाह हो जाता है, विवाह के उपरांत संतान उत्पत्ति हो जाती है, संतान की परवरिश और फिर उनका विवाह शादी कर देना और फिर परमात्मा से मंगल कामनाएं करना कि हमारे बच्चों को भी संतान देवे, उसके बाद हमारी मृत्यु हो जावे। तो हमने इतना ही मान रखा था कि हमारा मनुष्य जीवन का इतना ही कर्तव्य होता है। तत्वज्ञान से पता चला कि ये कर्तव्य नहीं, इसके साथ साथ हमारा बहुत सा काम और भी शेष है। केवल इतना ही काम नहीं था कि बच्चे उत्पन्न करना, फिर उनकी परवरिश करना, उनको पाल पोस कर बड़ा करके फिर विवाह शादी कर देना, ये तो है ही है कार्य, लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट वर्क था, एक अति आवश्यक कार्य था कि आत्म कल्याण भी करवाना चाहिए था। तू सात्म कल्याण के लिए हम इतनी रुचि नहीं रखते थे। जैसे भी परंपरागत कोई साधना पूजा हमने करनी होती थी, वो वर्ष में, छह महीने में या महीने में, वो किसी विशेष स्थान पर जाकर के हम करके बस इतना ही अपना कार्य समझते थे कि भक्ति इतनी ही होती है। जब हमें तत्व ज्ञान हुआ तो पता चला कि इतनी ही भक्ति नहीं थी, भक्ति का बहुत अलग एक और सब्जेक्ट है, अलग से और इसका प्रोस्पेक्टस है। तो उसको पाठ्यक्रम बहुत शेष रहता था, उसका हमें पता नहीं था। उसी का ज्ञान तत्व ज्ञान से होता है। परमात्मा कहते हैं जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब तक धसे न आब। हम छोटी मोटी साधनाएं करते थे, क्या करते थे, मंगलवार का उपवास रखा, सवा रुपये का, सवा पांच का, या कोई सवा मन का प्रसाद कूट छेद का वो बांट दिया। फिर छोटी मोटी कोई आरती कर ली, जैसे ओम जय जगदीश, हरे जय गणेश देवा, इन आरतियों को करके ही हम अपने कार्य को भक्ति क्रम को पूरा मान चुके थे। नहीं, परमात्मा की भक्ति हमने शास्त्रों के अनुसार करनी चाहिए। शास्त्र विधि को त्याग के यदि हम मनमानी साधना करते हैं वो व्यर्थ है। हमारे सदग्रंथ कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और परम पवित्र सवसम पांचवा वेद, सवसम वेद, और हमने ज्ञान ग्रहण करने के लिए इनके अतिरिक्त और भी सदग्रंथ हैं, जैसे 18 पुराण और महाभारत, रामायण, साथ में कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल आदि सभी पवित्र सदग्रंथ भी हमें ज्ञान ग्रहण करने के लिए सहयोगी हैं। लेकिन भक्ति के लिए पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी और परम पवित्र पांचवा वेद, सवसम वेद, जो परमेश्वर की अमृत वाणी है, कबीर वाणी, ये हमारे को इन पवित्र पांचवा जो वेद है उसमें सभी समावेश है। चारों वेदों का ज्ञान बहुत ही अच्छी तरह निर्णायक तरीके से है। पवित्र गीता जी का ज्ञान उस सवसम वेद पांचवें वेद में, और पवित्र 18 पुराणों का ज्ञान, पवित्र महाभारत का ज्ञान, पवित्र रामायण का ज्ञान, पवित्र बाइबल का ज्ञान, पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान, उस पांचवा वेद जो है ये ऑल इन वन कहते हैं। ऑल इन वन यानी गागर में सागर वाली बात है। तो वो पांचवा वेद जो है वो था सिंपल लैंग्वेज में, कबीर वाणी, दोहों में, लोकोक्तियों में, और हमने उस परमात्मा के जो पांचवें वेद को नेग्लेक्ट कर रखा था, उसको हमने अवॉइड कर दिया था इस आधार पे, क्योंकि जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान, महर्षि, संत, ब्राह्मण विद्वान पुरुष जिनको हम विद्वान मानते थे, जो ब्राह्मण मानते थे कि वो संस्कृत भाषा को जानते थे, और ये वेद जो चारों वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और पवित्र गीता जी और पवित्र महाभारत, पवित्र रामायण श्री वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जी रचित, ये सभी संस्कृत भाषा में थे। तो जो संस्कृत के ज्ञाता विद्वान थे वो हमें ये भ्रमित कर देते थे कि कबीर साहब को ज्ञान नहीं था, वो शिक्षित नहीं था, अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए वो वेदों और गीता जी के विषय में कुछ नहीं जानता, उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया अपनी वाणी में, वो तो वैसे ही बेकार का ज्ञान है। तो उस समय ये मान लेना उचित भी था, क्योंकि हमें अक्षर ज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज अक्षर ज्ञान युक्त नहीं थे, इसलिए उन संस्कृत के ज्ञाताओं को परम विद्वान मानना उनकी व्यवस्था थी। अब हम शिक्षित हो गए हैं, अब पूरा मानव समाज शिक्षित है और वेद और गीता जी और अन्य भी सद्ग्रंथ जितने हैं उनका अनुवाद भी उन संस्कृत के विद्वानों ने कर रखा है। उन्होंने कई जगह त्रुटियां की हैं उस अनुवाद में, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने उस जो उनकी समझ में नहीं आया उसको गलत अनुवाद कर दिया। जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में अनुतमाम को अति उत्तम लिख दिया, जबकि अनुतम का अर्थ अश्रेष्ठ होता है। फिर गीताजी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में वरज का अर्थ आना कर दिया, जबकि वरज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश के वर्ड गो का जाना होता है, उसका अर्थ कम नहीं हो सकता, अर्थात आना नहीं हो सकता। ऐसी ऐसी त्रुटियां इन संस्कृत के विद्वानों ने अनुवाद करते समय की, क्योंकि उन्होंने उनको तत्व ज्ञान नहीं था, उनको ये मालूम नहीं था कि गीता जी का ज्ञान किसने बोला है। उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी को ही एक सुप्रीम पावर मानकर, यानी उसी को एक अभिनेता मान करके, पूर्ण परमात्मा जैसे एक प्रांत का मंत्री होता है, श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी, श्री कृष्ण जी कहो चाहे विष्णु जी कहो, ये एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं, सतोगुण विभाग के, और श्री ब्रह्मा जी रजोगुण विभाग के मंत्री हैं और श्री शिव जी तमोगुण विभाग के मिनिस्टर हैं, और इनके पूज्य पिताजी काल भगवान ब्रह्म, जिसको अक्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, वो एक ब्रह्मांड में चीफ मिनिस्टर समझो, मुख्यमंत्री है। और ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों का कुल मालिक जो है, सबका ओवरऑल कंट्रोलर, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसका वास्तविक नाम कबीर देव है, हम उसको कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर प्रभु, कबीर भगवान कहने लगे। तो अब श्री कृष्ण जी जो ज्ञान गीता जी में बता रहे हैं, श्री कृष्ण जी तो गीता जी बोल ही नहीं रहे, जैसा कि ये सोच रहे हैं ये संतजन ऋषिजन जिन्होंने अनुवाद किया, उन्होंने श्री सोचा है कि श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, नहीं, श्री कृष्ण जी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वो काल भगवान जो उनका पूज्य पिताजी है, वो श्री कृष्ण के शरीर में सूक्ष्म रूप से जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ऐसे बोल रहा है। वो ब्रह्म है और वो पूर्ण ब्रह्म की महिमा भी बता रहा है, अपनी महिमा भी बता रहा है। इसलिए उसने बताया है कि मेरी जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि मेरे से ऊपर और परमात्मा है, उसी की भक्ति से आपका पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो सकती है, और मेरी साधना से जन्म मृत्यु समाप्त नहीं होती, क्योंकि गीता जी के अध्याय नंबर 4 के मंत्र 5 में लिखा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी कहा कि अर्जुन ये राजा लोग, ये सैनिक, तू और मैं पहले भी थे, आगे भी होंगे, ये मत सोच कि हम आगे नहीं होंगे, हमारा और तेरा जन्म मृत्यु कंटिन्यूस रहेगा, गीता बोलने वाला बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 10 के मंत्र 2 में गीता बोलने वाला यानी ब्रह्म कह रहा कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को कोई नहीं जानता, ये ऋषि महर्षि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इनका आदि कारण मैं हूं। इससे भी सिद्ध होता है कि गीता बोलने वाले का जन्म तो हुआ है, लेकिन ये ऋषि महर्षि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, क्योंकि ये इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अब जैसे दादा की उत्पत्ति को पिता की उत्पत्ति को दादाजी बता सकते हैं, संतान को मालूम नहीं होता इनका कब जन्म हुआ था या हुआ था या नहीं हुआ था। तो इस प्रकार गीता जी बोलने वाला खुद कहता है कि मेरा तो जन्म और मृत्यु होता है, और पूर्ण मुक्त मोक्ष उसी को कहते हैं जो जन्म मृत्यु कभी भी ना हो। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाले ने कहा, भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर, यानी गीता बोलने वाले से कोई अन्य प्रभु है, अन्य परमात्मा है जो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर शब्द उसके लिए प्रयोग किया है, तो हे पार्थ, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सदा रहने वाले लोक में, सत्य लोक में चला जाएगा। इससे क्या सिद्ध हुआ कि यदि हम यहां ये क्या बताते हैं, अनुतम शब्द के अर्थ को करते समय कुछ अनजान लोगों ने ऐसी टिप्पणियां दी हैं कि समास संस्कृत में यानी व्याकरण में एक समास चैप्टर होता है, तो कहते हैं उस समास के आधार से अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम बन जाता है। नहीं, यहां समास भी फेल हो जाता है। समास कैसे फेल हो जाता है? यदि गीता बोलने वाला भगवान की टिप्पणी को, इस श्लोक को यह माना जाए कि इसका अर्थ अति उत्तम है, अनुत्तम का हम नहीं मानते उनकी दृष्टिकोण से, तो भी ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अति उत्तम अगर सर्वश्रेष्ठ हो गया तो वो फिर अन्य भगवान के बारे में नहीं कहता कि मेरे से कोई और सर्वश्रेष्ठ प्रभु है, उसकी शरण में जाए। यदि यही सर्वश्रेष्ठ माना जाए तो ये और के लिए क्यों कहता फिर? इससे यह भी सिद्ध हो गया कि यहां अनुतम का अर्थ अनुतम यानी अश्रेष्ठ ही होना चाहिए। समास भी व्यर्थ है, ये जो समास इसमें लगेगा ही नहीं। समास जब लग जाता कि गीता बोलने वाला किसी अपने से ऊपर किसी और परमात्मा के विषय में चर्चा ही नहीं करता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, इसलिए अनुतमाम यानी जिससे उत्तम कोई और ना हो, ये कहते हैं अनुत्तम का अर्थ जिससे उत्तम कोई और ना हो। तो ये तो खुद कहता है मेरे से उत्तम कोई और है, उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तो परम शांति को प्राप्त होगा। तो यहां इन्होंने ऐसे अज्ञानता के कारण पवित्र गीता जी के अनुवाद को गलत कर दिया, लेकिन गीता जी गलत नहीं है। वेद कतेब झूठे निवाई, झूठे हैं जो इनको समझे नहीं। वेद और कतेब और गीता जी ये गलत नहीं है, लेकिन इनको जो नहीं समझ सके वो अज्ञानी थे, अनजान थे। इसी प्रकार गीता अध्याय नंबर 18 के मंत्र 66 में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तरवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा सोच। गीता बोलने वाला भगवान तो कह रहा है कि तुम मेरे लेवल की जितनी भी तने पूजा की है, क्योंकि गीता बोलने वाले के लेवल की पूजा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि ओम इति एक अक्षरम व्यवहारण अनुसमरण, एक ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मेरा तो एक ओम नाम है, और जो इसका अंतिम श्वास तक स्मरण करता है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म मुझ ब्रह्म का, तो केवल एक ओम मंत्र है यही, और इसका जो अंतिम श्वास तक स्मरण करता मेरे वाली गति को, मेरे वाली जो परम गति है यानी मेरे लेवल की जो गति है उसको प्राप्त करता है। फिर अपनी परम गति को यहां अश्रेष्ठ लिख रहे हैं 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कि ये ज्ञानी आत्मा सभी हैं तो उद्धार, लेकिन ये मेरा मत है, लेकिन ये मेरे वाली ही अनुतम साधना में दीन है, इनको तत्व ज्ञान ना मिलने से पूर्ण संत मिला नहीं और ये पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते। इसलिए के पूर्ण मोक्ष के लिए लिखा 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि जब तुझे तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और फिर कहता है कि मैं भी उसी की शरण में हूं, उसी की पूजा करनी चाहिए। तो यहां भी सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता सर्वश्रेष्ठ भगवान नहीं है, यानी सुप्रीम पावर नहीं है, वो किसी और सुप्रीम पावर की तरफ संकेत कर रहा है। जैसे गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में कहा कि अर्जुन जब तू पूरे तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएगा और तू मुझसे भी परिचित हो जाएगा, क्योंकि तत्व ज्ञान से पता चलेगा कि वो काल है, सबको खाता है। इस प्रकार तो उस समय क्या लिखा कि जो मेरी शरण होकर जरा मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण धातुओं को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में क्या बताया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो तत्ब्रह्म को, जो तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म माने उस परमेश्वर को, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के मंत्र 62 में कहा है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त हो जाएगा। तो उस तत्ब्रह्म के विषय में निर्णायक ज्ञान दिया है। सातवें अध्याय के 29वें श्लोक में लिखा है कि जो उस तत्ब्रह्म, ब्रह्म तत्व, उस तत्ब्रह्म को जानता है और संपूर्ण ध्यात्म को जान जाता है, तो वो और संपूर्ण तत्व ज्ञान के बाद फिर सब कर्मों का पता लग जाता है, कौन सा कर्म हमने करना चाहिए ध्यात्म में, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सी पूजा छोड़नी चाहिए, कौन सी ग्रहण करनी चाहिए। उसके पश्चात जब उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है तो वो साधक उस परमात्मा को जानकर, पूर्ण परमात्मा को और पूरे धात्मक ज्ञान को जानकर, और जो मैं ज्ञान तुम दे रहा हूं इसको आधार मानकर, इसके शरण होकर के, इसी के आधार पर जो निर्णय काम करता है, तो फिर वो तो व्यक्ति यहाँ की कोई, संसार की कोई इच्छा नहीं करेगा किसी भी वस्तु की, वो जन्म और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करता है। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 श्लोक 29, ये है गीता अध्याय नंबर 7 गीता अध्याय नंबर 7 और यहां देखिएगा 29 श्लोक नंबर 29 ये वाला, ये 29 इसमें लिखा है, संस्कृत देखिएगा इसकी, जरा मरण मोक्षाय, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते, ये देखिएगा ते ब्रह्म तत्, इसको तत्ब्रह्म कहें या ब्रह्म तत्, तत् ब्रह्म तत् विदु कृष्णम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। तो यहां देखिएगा ये दो ब्रह्म तत्व है, ये ब्रह्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व का अर्थ है तत्ब्रह्म, इसको तत्ब्रह्म भी कहते हैं, आगे दिखाता हूं। तो इसका अनुवाद क्या किया है ना, वैसे अनुवाद इसका ये बनता है कि जो गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो मेरे शरण होकर, जो मेरे शरण होकर संपूर्ण जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, तत् ब्रह्म, या इन्होंने सही कर दिया, ये देखिएगा तत् यहां ले लिया तत् और यहां ब्रह्म, यानी यहां उस और यहां ब्रह्म, उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म, उस ब्रह्म को यानी कोई और परमात्मा है, तत् ब्रह्म को यहां देखिए, यहां है ये तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, देखना ये तत् ब्रह्म, यहां इन्होंने किया, यहां रखा कर ऐसे रखो, ये है, अब जो क्लियर करना चाहता हूं, ये तत् और ये संस्कृत में ब्रह्म, उस ब्रह्म, उस ब्रह्म का अर्थ है उस परमात्मा, उस परमात्मा, ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, तो ब्रह्म यानी उस ब्रह्म, उस ब्रह्म को तत् ब्रह्म। तो यहां आठवें अध्याय के उस ब्रह्म को, संपूर्ण धात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, जो मेरे शरण होकर अर्थात मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर आधारित होकर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं। उनसे तत्व ज्ञान समझने के उपरांत वे तत्व पूर्ण रूप से उस परमात्मा को और पूरे धात्म ज्ञान को समझ लेते हैं। अब क्या बताना चाहा है कि जैसे गीता ज्ञान दाता प्रभु कह रहा है कि मेरे शरण होकर जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्या दे रहे हैं वो ज्ञान के मेरी भक्ति करनी है तो मेरा ओम नाम है और इससे जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरी और मेरी सदा बनी रहेगी और किए हुए कर्म का फल ही मिलता रहेगा। और जो मेरे अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मूर्खों की पूजा है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश और इससे नीचे जितने भी देवता अन्य देवताओं में आते हैं। गीता जी के 10 नंबर 7 के मंत्र 12 से लेकर 15 और फिर 20 से लेकर 23 तक स्पष्ट किया है और 9वें अध्याय के 20 21 22 23 में स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं उनकी वो साधना शास्त्र विरुद्ध है और तीनों गुणों की पूजा करने वाले रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी की पूजा करने वाले भी साधक मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए पूर्ण मोक्ष के लिए पूर्ण उस तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा। तो यहां कहा है कि जो उस तत्ब्रह्म को जान लेते हैं संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हो जाते हैं वह फिर केवल जन्म और मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं। वो इस संसार की कोई डिमांड नहीं करते किसी भी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण कह दीवान बाती। परमात्मा कहते कितना मांगू भगवान ते, यहाँ की जो वस्तु जो यहाँ का भौतिक सुख के मांगू, एक पुत्र मांग लू, थोड़ी सी संतान संपत्ति मांग लू, मान ले 20-30 एकड़ जमीन ले लू मांग लू, 5 कोठी मांग लू और वही और भी कार मांग लू, 1-2 फैक्ट्री मांग लू वो भी मिल जाए, ये रहते को नहीं अपने साथ। उसका उदाहरण दिया है कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, थिर माने कोई सथाई नहीं है वस्तु, और देखत नैन चला जग जाई, आंखों के सामने दुनिया जो करोड़पति है वो 1 मिनट में मर जाते हैं हेलीकॉप्टर में गिर के और वो अपनी ही संपत्ति का नीचे दबकर मर जाते हैं, वह संपत्ति यही रह जाती है। देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत सवा लख नाती, अब रावण का 1 लाख पुत्र बतावे, हम तो 1 पुत्र मांग के ही मांग लेंगे भगवान से, उसी पे तो अपना जीवन व्यर्थ कर जाए, वहां बस सब कुछ मिल गया हमें, बहुत कुछ हो गया, नहीं पुत्र मिला अच्छी बात है, 2 हो गए 4 हैं 1 है कोई बात नहीं, लेकिन यहां ये जीवन मृत्यु बना रहेगा या कुछ नहीं रहेगा, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के उपरांत वहां फिर कभी कष्ट नहीं होता, फिर वहां मृत्यु नहीं होती। ऐसा ही हमारा परिवार होगा, ऐसा ही हमारा जीवन होगा, लेकिन वहां का रहन सहन और शरीर इससे भिन्न होगा, आकार यही होगा लेकिन मेटेरियल ऑफ बॉडी ये भिन्न हो जाएगा। जैसे एक तो मिट्टी का मटका बना हो, एक तो मिट्टी का प्याला हो, एक सोने का प्याला हो, सोने की बड़ी होती तो उसमें बहुत अंतर, मिट्टी का तो पड़ते टूट जा गिरते ही टूट जाता है और सोने की बनी हुई वस्तु सथाई होती है, उसको जंग नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार सतलोक में हमें शरीर मिलेगा वो 1 तत्व का नूरी तत्व से बना हुआ होगा, उसमें कोई मिक्स नहीं होगा, वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो यहां यही बताना चाहा है कि क्या मांगू, अब रावण के 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती और उस दीव उस रावण का फिर कोई दीवान बाती, यानी सब नष्ट हो गया, कुल ही नष्ट हो गया। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, 1 पलक में राज विराजे जम के पड़े जजीरम। ओए होए, उस परमात्मा की भक्ति ना करने से कहते हैं सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, सारी सोने की लंका थी, इतना धन था उसके पास, कुबेर भी उसके आगे हाथ जोड़ता था, और फिर तत्व ज्ञान ना होने से, गलत साधना करने से वो रावण एक पलक में राज विराजी, वो राज भी नहीं रहा, विराज हो गया, राज से रहित हो गया। तो यहां ये बताते हैं कि वो तत्व ज्ञान से के बाद वो साधक इतना परिचित हो जाता है कि यहां की वस्तु की डिमांड नहीं करता, जन्म और मृत्यु से छुटकारे का ही बार बार प्रयत्न करता है। तो यहां लिखा है साथ, देखा अपने सातवें अध्याय का और ये 29वें मंत्र में कहा कि वो तत् ब्रह्म को समझ लेता है। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में ही अर्जुन ने प्रश्न कर दिया परमात्मा, किम तत् ब्रह्म पुरुषोत्तम, के हे पुरुषोत्तम वो तत्ब्रह्म कौन है, उसके विषय बता मुझे। अब फिर देखिए पवित्र गीता जी, ये देखिए पवित्र गीता जी, ये है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जयदयाल गोविंद का इसके लेखक है, ये है श्रीमद् भगवत गीता और यहां नीचे देखिएगा गीता प्रेस गोरखपुर और इसके अध्याय नंबर 7 के, अभी आपको मंत्र नंबर 29 को दिखाया, अध्याय नंबर 7 और ये मंत्र नंबर 29 ये रहा, इसमें यहां इसका अनुवाद है। तो इसमें लिखा है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष यानी वे साधक तत् ब्रह्म, ओहो ये देखो तत् ब्रह्म, आप यही रखो इनको ऐसे ही दोनों दिखने दे, ये भी ये तत् ब्रह्म, ये तत् और ये ब्रह्म, यानी तत् माने उस ब्रह्म को यानी उस भगवान को उस परमात्मा को जानते हैं और संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। यहां आइएगा देख, ये 8वां अध्याय प्रारंभ हो जाता है इसी पृष्ठ पे, ये 8वां अध्याय इसमें प्रथम ही मंत्र में अर्जुन वाच यहां लिखा है, पूछा है कि किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म और किम कर्म पुरुषोत्तम। तो यहां इसका क्या पूछा है कि अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते, हे पुरुषोत्तम वह ब्रह्म तत् ब्रह्म क्या है, तत् ब्रह्म किम वह ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर तीसरे मंत्र में दिया है, इसी 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में, ये देखो इसमें लिखा है, पर अक्षरम ब्रह्म परमम, परम अक्षर ब्रह्म वह परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है वो। अब इस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में व्याख्या फिर कहां दी है, क्योंकि एक तो ब्रह्म हो गया, एक परम अक्षर ब्रह्म हो गया और यहां गीता जी में तीन परमात्माओं की व्याख्या, तीन प्रभुओं की, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म, एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, एक परम अक्षर ब्रह्म। अब यहां पर दो भगवान सिद्ध, दो ब्रह्म सिद्ध हो गए, एक तो ब्रह्म जो गीता बोल रहा है, एक वो कहता तत्ब्रह्म यानी कोई और परब्रह्म है, तो इसके बीच उस परम अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म के मध्य में एक परब्रह्म और भगवान है, उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में स्पष्ट, 16 और 17 में स्पष्ट किया है। उसमें कहा है कि 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि इस संसार में, इस संसार में दो भगवान हैं, कौन सा संसार, ये पृथ्वी लोक कहलाता है, ब्रह्म और परब्रह्म के जो ब्रह्मांड हैं, इसमें दो भगवान, एक क्षर पुरुष एक अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और तीसरा है इन, फिर 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में पुरुषोत्तम जो जिसको हम पुरुषोत्तम कह सकते हैं, जिसको भगवान कह सकते हैं, वो तो इन दोनों से भी नाराज, सर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म और परब्रह्म से भी अलग है। वो परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष वो तीसरा है। तो उस तीसरे के शरण में जाने से ही जीव का छुटकारा होगा। अब देखिएगा, यहां देखना, ये गीता अध्याय नंबर 15 और इसका संस्कृत यहां पर देखिएगा 16, इसका मंत्र है 16, अध्याय 15 का ये मंत्र नंबर 16, इसमें लिखा है द्वौ द्वौ इमौ पुरुषौ लोके छर च अक्षर एवं एवं च छर सर्वाणि भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसलिए लिखा द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस लोक में दो प्रकार के पुरुषों माने भगवान हैं। इमौ माने इस, लोके माने संसार में, पुरुषों माने द्वे माने दो प्रकार के पुरुष माने भगवान है, एक छर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। एमे माने इसी प्रकार, इन दोनों के लोकों में सभी प्राणियों के शरीर सर्वाणी भूतानी कुटस्थ, सर्वाणी भूतानी छर है, सब भूतों के प्राणियों के ऋण के भी शरीर तो नाशवान है, और कुटस्थ माने आत्मा जीवात्मा अक्षर उच्चते, जीवात्मा को भी अविनाशी कहते हैं। और लेकिन ये जो ब्रह्म अक्षर ब्रह्म और परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये दोनों नाशवान है। अब इसका करियर यहां लिखा है, इस इनके द्वारा अनुवाद किया हुआ, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ लिखना चाहिए था भगवान है, दो प्रभु है। इन्होंने यहां मिस्टेक की है, पता नहीं था इनको, अपनी मर्जी से लिख दिया। ये पुरुष हैं, दो भगवान हैं, दो प्रकार के प्रभु हैं। इनमें संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब यहां लिखा है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। हाँ, यहां ऐसा करा दो, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यानी ऊपर ये लोक तरियम अविश्य विभर्ति अवे ईश्वर है। अवे माने अविनाशी, ईश्वर माने प्रभु। इसका अर्थ है उत्तम, उत्तम माने सर्वश्रेष्ठ, उत्तम माने उत्तम, पुरुष माने प्रभु, तो अन्य ऊपर जो वर्णित किए हैं उन दोनों से कोई और भगवान है जो वास्तव में उत्तम है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, उत्तम पुरुष माने पुरुषोत्तम, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में अविश्य माने प्रवेश करके विभर्ति माने सबका पालन पोषण करता है, वही अवय ईश्वर है, वही अविनाशी परमात्मा, वास्तव में अविनाशी वो है, इन दोनों से भी भिन्न है। इनका अनुवाद देखिए, उत्तम पुरुष है तो अन्य, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, यहां लिखना था उत्तम भगवान यानी पुरुषोत्तम तो और ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार कहा गया है। अब देखिए इसमें स्पष्ट हो गया, गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरे से कोई और परमात्मा है जिसको पुरुषोत्तम कहा जा सकता है, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं। मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम कहते हैं, क्योंकि जिनको ज्ञान, लोक वेद माने एक अक्षेत्रीय ज्ञान होता है जिसे दंत कथा कहते हैं, सुने सुनाए ज्ञान को लोक वेद कहते हैं। परमात्मा भी बताते हैं अपने ऊपर उदाहरण, आप ही देकर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले है दीपक दीन्या हाथ। कहते मैं भी, यानी हमारे जैसे अनजानों को परमात्मा अपने आप उदाहरण ढाल कर कहते हैं कि मैं तो लोक वेद के आधार पर इन ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर, इनको अजन्मा अजर अमर सर्वशक्तिमान सबके मालिक मानकर भक्ति लग रहा था, लेकिन इन्हीं के इतिहास में लिखा है कि ये तो नाशवान है, और इनके पिता जो ब्रह्म है, इनकी माता दुर्गा है, वो ब्रह्म कह रहा है कि मैं भी छर हूं, नाशवान हूं, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, मैं भी अजर अमर नहीं हूं। वो अजर अमर अविनाशी तो कोई अन्य प्रभु है जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि लोक वेद के साथ मैं पीछे लग गया जाऊं था, मैं लोक वेद के साथ सुने सुनाए ज्ञान के आधार पर दंत कथाओं पर ही मैं भक्ति इन्हीं भगवानों पर की कर रहा था जो नहीं करनी चाहिए थी, जिनसे मोक्ष नहीं हो सकता। और फिर सतगुरु मिल गए इस भक्ति मार्ग में, रस्ते में, इस भक्ति के सफर में, करते करते जो पुण्यात्मा साधना कर रहे हैं, कोई कहीं दोग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो परमात्मा की टो में है, तो उन्हीं को मालिक मिलता है, क्योंकि वो कहीं घूमते फिरते सतगुरु के पास पहुंच जाते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो तत्वदर्शी शांत यानी सच्चे ज्ञान से परिचित हो, वास्तव में वो सतगुरु है, अन्य सतगुरु नहीं है, बेशक फीत लगाए रहे। परमात्मा भी कहते हैं कि भाई मेले ठेले जाइए, मेले भड़ा मिलाप और पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। परमात्मा ने कहा है कि परमात्मा की टोह को बंद मत करना, उसकी खोज को बंद मत कर देना, उसकी तलाश जारी रखना और घूमते रहना इधर उधर, कहीं जहां भी संत समागम होते हैं या कोई पूजाएं होती हैं, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिले तब तक ढूंढते रहिए, बंद मत बैठ मत जाना, उसकी उसकी खोज को समाप्त मत कर लेना। तो कहते पत्थर पानी पूजते हैं कोई साधु संत मिल जाए, यानी परमात्मा की चाह में इधर उधर भटक रहे हो, कोई सत्संग सुन रहे हो, कहीं संत की तलाश में सत्संग सुनते हो, कहीं पर मेला भर रहा है भक्ति के मार्ग के लिए, वहां पहुंच जाते। कहते जाते रहिए, मेले ठेले जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते कोई साधु संत मिल जाते। ये गलत साधना करते करते भी कोई संत मिल गया तो वो सब छुड़वा देगा और सत साधना पर लगाकर तेरा कल्याण करवा देगा। तो यही गीता जी में और यही परमात्मा कह रहे हैं कि मैं पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ और रस्ते में सतगुरु मिले, तत्वदर्शी संत मिल गए, इस भक्ति के सफर में, भक्ति के मार्ग में उन्होंने मुझे तत्व ज्ञान रूपी दीपक दे दिया, अब मैं उसकी रोशनी में चल रहा हूं, तत्व ज्ञान के आधार पर साधना कर रहा हूं, आन उपासना नहीं करता, अनन्य वन से भक्ति करता हूं, मैं व्यभिचारिणी भक्ति नहीं कर रहा। गीताजी में लिखा कि उस परमात्मा की प्राप्ति तो अव्यभिचारिणी भक्ति से ही होगी। यहां बताया कि मुझे तो लोक, गीता ज्ञान दाता भगवान कह रहा है कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर दुनिया पुरुषोत्तम मानती है, जो सातवें पंद्रहवें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा कि मैं तो लोक वेद के कारण वो पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, वास्तव में पुरुषोत्तम तो कोई और है। इसलिए जो अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद किए वो गलत कर दिए, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं था, उन्होंने गीता ज्ञान दाता को सर्वोच्च मानकर, सर्वोच्च शक्ति मानकर उसी पर गीता जी के अनुवाद को ढाल दिया। अब देखिए सातवें अध्याय का 18वां श्लोक जिसमें इन्होंने उत्तम को अनुत्तम को उत्तम किया है, ये देखिएगा वही पवित्र गीता जी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और ये मंत्र 18, इसमें देखिएगा, इसकी संस्कृत है उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम। उदारा उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, आश्रित सही युक्तात्मा माम एव अनुतमाम गतिम। ये अनुतमाम शब्द लिखा है, ये अनुतमाम शब्द लिखा स्पष्ट, अनुतमाम गतिम, माम एव अनुतमाम गतिम, मेरी ही मुझ में, इस अनुतमाम गति के आधार से मुझ में, मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित है, आश्रित हैं, इसी में ये भक्ति करने वाली आत्माएं मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही ये आस्थित हैं, आश्रित हैं। यहां देखना, इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, कैसे कर दिया, ये सभी उदार हैं, जबकि यहां स्पष्ट लिखा है कि उदारा सर्वे एव ते ज्ञानी तु आत्मा, इसका अर्थ ये सभी ज्ञानी आत्मा है तो उदार तू माने परंतु ये सभी आत्मा मेरे विचार से सभी मेरे वाली अनुतम गति में ही आश्रित है, इसका यह अर्थ होना सीधा सा। लेकिन इन्होंने घुमाने के लिए क्या लिखा है, ये सभी आत्मा उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप है। नहीं, ये यहां सीधा अर्थ बना है कि उदारा सर्वे एवते ज्ञानी तो आत्मा, ये उदारा माने उदार हैं, ये सभी ज्ञानी आत्मा उदार हैं, यानी नेक हैं, भक्ति चाह रहे हैं, परंतु रास्ता ठीक ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ही आश्रित हैं। ये इन्होंने क्या है, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो मैं साक्षात मेरा स्वरूप है ही है, ये मेरा मत है, ये इसका विचार है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा अनुतमाम, ज्ञानी भक्त अनुतमाम अति उत्तम गति स्वरूप मोजमा ही अच्छी प्रकार स्थित है। देखो अनुत्तम माने अति उत्तम कर दिया, गुड का बैड का अर्थ गुड कर दिया, ये गलत कर दिया। इसी प्रकार इन्होंने चौथे अध्याय के सातवें अध्याय के ही 24वें श्लोक में अनुत्तम का अर्थ, ये देखो ये अध्याय 7 है, अध्याय 7 और मंत्र 24 ये रहा। इसमें लिखा है अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, परमम भावम अजानत मम अवम अनुतमम। ये क्या लिखा है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम, या अनुतम माने अनुतम ही लिख दिया, अनुतम माने अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए, यहां अनुतम माने अनुतम ठीक लिख दिया अनुतम, और वहां अति उत्तम लिख दिया अनुतम है, माने आप पे दोगली बात कर रहे हैं, यह तो अनुतम ठीक है गलत है, वहां अति उत्तम नहीं लिखना चाहिए था। न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद भगवत परमात्मा मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त मानते। इसका अर्थ ये है वास्तव में कि ये बुद्धिहीन लोग जो मुझे कृष्ण मान रहे, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण माँ की तरह माँ से जन्म लेकर कभी पैदा नहीं होता, क्योंकि ये काल है, ये उप परमात्मा की सबल शक्ति से उत्पन्न हुआ था और ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने व्यक्ति रूप में एजिटिज नहीं आता, क्योंकि इसने कसम खाई है, प्रतिज्ञा की हुई है। तो यहां ये कह रहा है कि ये मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, मैं कृष्ण नहीं हूं, और कृष्ण तो सामने था ही, अगर वो गीता कृष्ण जी बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं कृष्ण नहीं हूं, वो तो काल बोल रहा था मैं कृष्ण नहीं, यानी मैं व्यक्ति रूप में जन्म नहीं लेता, और वो कृष्ण जी तो जन्म ले रहे। तो ये इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है, धैर्य पूर्वक ज्ञान को समझना चाहिए। और सदग्रंथ हमारे पास है, इसमें कई भावुक होकर के भगतजन सत्संग सुनना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो हमारे देवी देवताओं को बुरा कहता है। मैं न किसी को बुरा कहता हूं, मैं केवल यही पढ़ के सुनाता हूं जो अपने सदग्रंथों में लिखा है, अपनी तरफ से तो कुछ मिलावट करता ही नहीं, और सदग्रंथों को आपको पढ़ा रहा हूं, साथ में तुलना कर रहा हूं उन अनजान लोगों के ज्ञान की कि जिन्होंने वेदों और गीता जी के विरुद्ध टिप्पणियां की हैं, विरुद्ध ज्ञान समाज में फैला रखा है जो शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। अब हम जो प्रसंग चल रहा था कि ये इस प्रकार अनुत्तम के उत्तम शब्द बनाकर श्रेष्ठ शब्द कह के ये गीता जी के भाव को ही बदल दिया, अनर्थ किया, अर्थों के अनर्थ कर दिए, तो इन लोगों को ज्ञान नहीं था, और उसी से समाज उन्हीं से समाज ने वो लोक वेद ग्रहण कर रखा है, उस लोक वेद को छुटाने के लिए, उस लोक वेद से हृदय हटाने के लिए आपको तुलनात्मक तरीके से दोनों सदग्रंथों, यानी अपने सदग्रंथ और साथ में इन संतों ऋषियों महर्षियों के द्वारा दी गई अनुभव की पुस्तकें दिखानी पड़ती हैं। जैसे नकली और असली का तभी फैसला होता जो आमने सामने हो, जैसे पीछे सरकार ने नकली नोट पकड़े थे 500-500 के, और नकली भी टीवी पर दिखाया था और ओरिजिनल भी टीवी पर दिखाया था, दोनों की भिन्नता बताई गई थी, तो समाज को शीघ्र समझ में आ गया और वो हानि से बच गए। इसी प्रकार ये दास कर रहा है कि अपने सदग्रंथ वेदों को भी दिखाता हूं, गीता जी को भी दिखाता हूं, और साथ में इन अज्ञानी लोगों के द्वारा दिए गए अनुभव की लिखी पुस्तकों को दिखाता हूं। तो इससे वो लोग चिढ़ते हैं, वो डरते हैं, भागते हैं, जब उनने पुस्तक लिखी है और सैकड़ों वर्ष से पढ़ी जा रही है, अब क्यों घबराते हैं उसको पढ़ने के लिए, क्यों डरते हैं, मार दो रामपाल को, आग लगा दो आश्रम को, फूंक दो उसको, अरे मेरे मारने और फूकने से ज्ञान खत्म नहीं हो सकता, अब तो बुद्धिजीव समाज के अंदर पहुंच चुका है, इसका डूंडा पाटेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ये तो तोब का गोला है तत्व ज्ञान। अब सभी के नकली संतों के इस खोखले किलों को ढा देगा जो जनता को गुमराह किए बैठे हैं। इनको छुपने को जगह नहीं मिलेगी, इन ऋषियों और संतों को जो दुनिया को भ्रमित किए बैठे हैं। क्यों, अब ये भी नहीं कह सकते पुस्तक हमने ना लिखी। अब तो इनके पास एक ही विकल्प है कि रामपाल को खत्म कर दो और इसका ज्ञान बंद करवा दो। ये इन्होंने प्रयत्न कर ही लिया और जैसे प्रभु को मंजूर होगा वो हो जाएगा। लेकिन आखिरी सांस तक ये दास यही कहता जाएगा कि इन संतों के पास ज्ञान नहीं है, इन ऋषियों को कति ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो प्रमाणित आपके सामने ये दास कर रहा है। अब 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर आते हैं, उसमें क्या लिखा गीता ज्ञान दाता ने कि सर्व धर्मान परितज माम एकम शरणम व्रत। एकम का अर्थ होता है अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो। एकम यानी सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर की शरण में जा। मेरे लेवल की सभी पूजाएं, जैसे हम क्या करना होता हमने उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविद समर्थः। ये देखिएगा गीता अध्याय नंबर 17 और यहां देखिएगा 23 मंत्र नंबर 23 में ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविद समर्थः। आहा, गीता ज्ञान दाता कहता है कि ब्रह्मणे माने उस सचिदानंद घन ब्रह्म की, यानी अपने बारे में नहीं कह रहा। ये देखियो अनुवाद देखो इनके द्वारा, ओम तत् सत ऐसे ही है तीन प्रकार का सचिदानंद घन ब्रह्म का। ये ब्रह्मणे लिखा है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्मणे का अर्थ होता है पूर्ण परमात्मा यानी बड़े भगवान। सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम तत् सत, तो ये पूर्ण परमात्मा यानी उस सचिदानंद घन यानी गीता बोलने वाले से कोई और परमात्मा है, उसके बारे में गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म के विषय में तो उस सचिदानंद घन ब्रह्म का नाम तो ये ओम तत् है, उसका मंत्र ये है। अब वो सचिदानंद घन कौन है, अब दिखाता हूं आपको 7वें अध्याय के 8, 9, 10 क्योंकि इस एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 6 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे जब यह बुद्धि ठिकाना होगी, क्योंकि बहुत युगों से बिगड़ा हुआ ज्ञान है हमारा। 8वें अध्याय के अभी आपने 3रे मंत्र में सुना था, पढ़ा था कि वो तत् ब्रह्म है, वो सचिदानंद घन परमात्मा जो है वो तत् ब्रह्म, उसी को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है। जैसे आप किसी भी विभाग में कार्य करते हैं, जैसे ये दास सिविल इंजीनियर की इसमें नरे विभाग के अंदर जेई था, तो उसमें अलग अलग अधिकारी होते हैं। तो जैसे डिवीजन लेवल का एक अधिकारी एक्सियन होता है, तो वहां के कर्मचारी अधिकारी क्या कहते हैं कि साहब नहीं आए हैं, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है, तो उनके लिए अंडरस्टूड होता है कि कौन साहब है उनका, एक्सियन साहब ने कहा है। वो बार बार नहीं कहते एक्सियन साहब ने, वो कहते हैं साहब ने ऐसा बोला है। तो इसी प्रकार साहब माने मालिक, प्रभु, ब्रह्म। जैसे हम ब्रह्म कहते हैं तो 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी साहब है। तो बार बार नहीं कहते कि ज्योति निरंजन, बार बार नहीं कहते सर ब्रह्म ने ऐसा बोला है, ये ब्रह्म अंडरस्टूड है कि 21 ब्रह्मांड का मालिक तो ये ब्रह्म है। जैसे एक्सियन एक डिवीजन का मालिक होता है तो वो अंडरस्टूड है कि एक्सियन साहब कहने से समझ जाते हैं किसका आदेश है। तो यहां ब्रह्म शब्द इसलिए परिपक्व हो गया कि 21 ब्रह्मांड में यही साहब है, यही मालिक है। इसलिए ब्रह्म 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 का जा नाम जापो जाप करो, ब्रह्म ये है, ब्रह्म ही पूजा के योग्य है। तो इन लोगों ने इस ब्रह्म को ही, इस ब्रह्म को, अब देखिए आठवें अध्याय का